फिर ये जो बातें हैं कि मेरे सब ले लो और मुझे बचा लो, आप जरा इसको अपने ऊपर लें। आज दुनिया में हम चाहते हैं कि मेरी जगह मेरे बच्चे को बुखार हो जाए, जो मुझे शुगर होनी थी वो मेरे बेटे को हो जाए, चाहते हैं। बाकी रिश्तों को तो आप बाद में खुद ही सोच, खानदान से तो दिल में इतने बुखस पाले होते हैं हमने, सबसे हम अच्छे होते हैं खानदान के साथ, हमारे दिल में कोई ना कोई कांटा पड़ा ही होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई बात तो बुरी लगी होती है। वहां क्या होगा जिस मैदान में खड़े आप इतने साहूकार बन रहे हैं, इसको भी लो, इसको भी लो, उसको भी लो। अब ये आयतें जो हम पढ़े, आपको इसकी सच्चाई का यकीन है? आप इस पे काम करें, घर जाकर इन सब रिश्तों के नाम लिखिए और इसमें अपने रिश्तों के नाम लिखिए। जैसे बेटा है तो उसकी जगह आप अपना बेटा लिखें, बीवी की जगह आप अपनी बीवी का लिखें, और हम खवातीन हैं हम इसकी जगह शौहर का लिख लेते हैं, अपने भाइयों के नाम लिखें। और एक चार्ट बनाएं, मैदाने हशर में खड़ी हूँ और इन सब रिश्तों को मैं आग में डलवा कर खुद जन्नत में जाना चाहती हूँ। इससे भी ज्यादा कोई संगदिल और बेरहम होगा और ये होने वाला है, लेकिन ये कौन होगा? मुजरिम। मोमिन ऐसे नहीं होंगे, मुजरिम वो होते हैं जिन्होंने अल्लाह को नाराज करके इन रिश्तों को खुश किया था। आज दुनिया में किसी को खुश करना चाहे अल्लाह की नाराजगी के साथ, इस आयत को दलील बना ले, बल्कि इस पे एक बड़ा खूबसूरत कोई कार्ड या कोई मैसेज बन सकता है लोगों को देने के लिए, कि जिन दुनिया वालों को बहुत समझते हो, क्यामत के दिन उनके साथ तुमने ये सब कुछ करना है। जरूरत इस बात की कि हम आज फिक्र कर लें। और फिर देखिए कि इतना कुछ कह रहे हैं, मान लेना चाहिए ना अल्लाह ताला को। जी मेरा सवाल समझिए, इतनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस दे रहे हैं कि मेरे बदले में मेरे खानदान ही पूरा ले ले, बल्कि जमीन के सब ले ले, तो क्या फरिश्तों को उसकी ऑफर कबूल नहीं कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए ना, अच्छी ऑफर है। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि ये काम दुनिया में करना था। यही आज मेरा और आपका इस दुनिया का इम्तिहान है। इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, अल्लाह ने आज दुनिया में खरीदे। और सूरह तौबा को आप छेड़ें तो उसमें जाके देखें, यही रिश्ते कमोबेश अल्लाह ने एक क्राइटेरियन बना के दिखा दिए कि लोगो, अगर तुम्हें अपने ये रिश्ते अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते के कामों से, जिहाद से ज्यादा प्यारे हैं, तो इंतजार करो कि अल्लाह अपने अजाब का फैसला ले आए। दुनिया में हम इन्हीं रिश्तों की तराजू में गड़बड़े करते हैं, इनको अल्लाह के भी हक दे देते हैं। और वहां देखिए, फिर एक और चीज देखिए, युबस्सर होना हो, ये भी नहीं है कि आंख ओझल, पहाड़ ओझल, किसी का मामला वहां हो रहा है, उसका उधर, आपको होश नहीं। जैसे अक्सर भगदड़ में होता है कि लोग मिल नहीं पाते ना, एयरपोर्ट पे बिखरे में या कहीं भी, या मैदान हरम में कहीं जाए, नहीं मिल पाते ना। युबस्सर होना हो, खुली आंखों से आप देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ला युसलु हमीमुन हमीमा, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ये हमीम के नीचे उसका नाम लिखिएगा, क्योंकि गर्म जोश दोस्त को कहते हैं, फास्ट फ्रेंड। जैसे उबलता हुआ पानी खौलता है ना, इस तरह कुछ दोस्तों की मोहब्बत खौलती है। दाल भी पका लेना तो दिल करता है भाग के उसको दे आए, कोई छोटी सी बात दिल में ना, कहते हैं जरा 2 मिनट का वक्त मिले ना, जरा फोन पे उसको भी बता दो। ये जोश मारती हुई मोहब्बतें, और उस दिन इंसान इनसे पूछेगा भी नहीं, इनका हाल पूछना, इनका मामला देखना, ये तो कोई बात ही नहीं। और ये जो लफ्ज है ना फसीला, फसल से है, फसीला कहते हैं छोटे खानदान को। खानदान क्यों? क्योंकि वो कबीले से जुदा होता है। अरबों में डिफरेंट स्टेप है, अशीरा, कबीला, आपको गालिबन सूरह हुजरात में लिखाए थे, वहां क्या लफ्ज आया था? कबील, कबायली, तआरफ़ु बैनकुम। तो ये फसीला क्या है? खानदान को, यानी जो बिल्कुल क्लोज सर्कल, इमीडिएट रिलेटिव्स कह लीजिए आप, और ये बहुत अजीज होते हैं। चले आइए देखते हैं कि उसकी ऑफर के जवाब में उसको अब क्या कहा जा रहा है। कहा हरगिज़ नहीं, कल्ला, आयत 15 से, नेवर, हरगिज़ नहीं, इन्नहा लज़ा, ये तो एक आग है, भड़कती हुई आग है ये, नज़ात लिश्शवा, जो गोश्त पोस्त को चाट जाएगी। शवा कहते हैं चेहरे की खाल को, ये जो स्किन है ना फेस की, ये सबसे सॉफ्ट होती है, जाहरी जिस्म के अज़ा में। अभी दूर ही होगा ना जहन्नुम में, तो उसके चेहरे की खाल लटक कर उसके पाँव में गिर जाएगी, ये हमें हदीसों से पता चलता है। और नज़ा क्या है? तनाज़ा, व नाज़ियाती गर्क़ा, आगे पढ़ेंगे हम, उचक लेना, छीनना, यानी उसके चेहरे की खाल को छीन लेगी ये। तो बरावता वल्ला, और जो पुकारती होगी उसको जिसने पुश्त फेरी और मुंह फेर कर चला गया। मुझे बता सकते हैं ये तद ऊ किसकी सिफत है, कौन करेगा ये काम? जी जी लजा, लजा की तरफ। ता जो ये मोनस की है, यानी ये आग ये जहन्नुम हर उस शख्स को पुकारेगी जिसने अपने आप को हक से दूर किया, पीठ फेरी, व जमा फा हुआ, फिर माल को जमा किया और गिन गिन कर रखा। जमा जमा करना, फाउआ गिन कर रखना, विया पिछले सबक में भी आया, थैलियों में गुथलियों में और छोटी छोटी पाउचिस में डाल डाल के वो पैसे छुपाता था, जमा ही करता था, गिनता ही था 99 का चक्कर। अब ये सारी सिफात जरा जमा करके देख लें, जहन्नुम किसके पास है? नंबर एक, जिसको हक बात अच्छी नहीं लगती, सुन ही नहीं सकता, कहते इसको सुन के डिप्रेशन होता है। इतनी देर में, जितनी देर में ये बातें सुनी है, पूरा सफारा पढ़ लेना था घर बैठ के, 100 दफा इस्तगफार कर लेनी थी। मैं क्यों इसको सुनूं जिसके बाद फिर अपनी फिक्र ही लग गई। अदबरा वतवल्ला, अदबरा सिर्फ अभी पुश्त फेरी है, लेकिन वतवल्ला पीठ फेर कर उठकर चली पड़ा। कुछ लोगों के लिए दीन की बात सुनना मुश्किल हो जाता है। और यहां से उठ के गया किधर? जमा फाउआ, दुनिया कहीं कुछ जमा करता रहा या खरीदता रहा या समेटता रहा, चलो शॉपिंग ना कर लो, चलो अब क्या खा रहे हैं, चलो ब्रेक में उठ के चले जाते हैं, चलो बाकी काम भी बहुत सारे हैं, दिस दैट इट दिस विट 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 करते रहो। क्यों करता है इंसान ऐसा, सवाल है? तो जवाब अगली आयत में, इन्नल इंसान न खुली का हलुआ, बेशक इंसान पैदा किया गया थुड़ दिला। ये हलू की जो कैफियत है ना, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कुरान 2010 का एक पूरा पारा था इस थीम पे, एंग्जाइटी। हलू किस कैफियत को कहते हैं? एंग्जाइटी को। हर वक्त बेचैन परेशान, ये लेना वो लेना, ये चाहिए, जो मिल गया वो छोटा, जो नहीं मिला वो बहुत बड़ा। पहले तड़पते रहते हैं, हाय ये मिले, ये कब होगा कब होगा, शादी कब होगी शादी कब होगी, एक एक दिन चुभता है। हो जाए तो फिर उसके दूसरी तरफ, दूसरी है तो तीसरी, जिधर है वहां कोई नहीं खुश, जिधर नहीं थे उधर की तड़प लग जाती है। हलू की कैफियत इंसान की हलाकत की कैफियत है। पीछे बात हुई कि माल कमाता था, ज़कात नहीं देता था और इस तरह से काम करता था, यहां उसकी वजह बता दी कि दुनिया दुनिया दुनिया। सख्त हरीस लालच वाला और जजा फजा करने वाले को अरबी में हलू कहते हैं। इंशाल्लाह आप इस साल के दौरे कुरान में इससे फायदा उठाएंगे, पूरे एक पारे में सिर्फ एंग्जाइटी पे बात होगी। ये जो हमें हर वक्त बेचैनी ही लगी हुई है ना, एंग्जाइटी, समझते हैं उर्दू में इसको क्या कहेंगे, कोई इसका उर्दू का तर्जमा करे? जी, मुसमहिल और बेकरार, तशवीश की कैफियत, बेचैन, इस्तराब, मुस्तरिब है आज इंसानों की ये कैफियत के नहीं, जिसको आप गले खूब से खूब तर की तलाश, हल में मजीद, हल में मजीद, बस हर वक्त कुछ ना कुछ है। हो सकता है दूसरे आपके नसीब पे रश कर रहे हो, बल्कि हसद कर रहे हो, और आप रो रहे हैं बैठ के कि मुझे तो ये करना है, मुझे उधर जाना है, मुझे ये चाहिए। आप अपने ऊपर लें कि क्या मैं हलुआ हूं। देखिए, एक चीज जो मैंने इस थोड़े से सफर से सीखी है, आपके अंदर ये कैफियत आ जाए कि मैं जहां होना मेरा यही मुकाम था, ये है ईमान का रंग। मुतमईन, रजी तो बिल्लाह रब्बन, आप उस बंदे को कोई खुशकिस्मत कहेंगे कि जो जिधर हो वो वहां से दूसरी जगह जाना चाहे? आप देखें ना, आप सब यहाँ के बैठे हैं माशाल्लाह, सुबह से बैठे हैं मुतमईन बैठे में, अच्छे लग रहे हैं आप, और अगर आप में कोई आए तो पहले इधर बैठ जाए, फिर 15-20 मिनट बाद यहां से उठे ना तो वहां चला जाए। तो यकीनन देखने वाला सोचेगा ना कि बेचारी इन बहन को कोई मसला है, या इनके पेट में दर्द है, या इनके पांव थक गए हैं, या इनको चाय चाहिए। तो इस तरह बात है ना, किसी की बीमारी तकलीफ में ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आप भी उठ के जा सकते हैं, विच इज नॉट अ बिग डील। लेकिन आम तौर पे ये कैफियत बताती है कि ये बंदा अंदर से मुतमईन नहीं है, ये जज्ब नहीं कर रहा। अब ये एक बीमारी की कैफियत हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन अगर तबीयत नहीं, हर बंदा चुलबुला हो, घर पे है तो कहता घर पे क्यों, बाहर है तो कहता बाहर क्यों, क्लास में आ गया तो क्लास में क्यों, शादी में चले गए तो कहते इधर क्यों आई, यहां मुझे क्या मिलना था, वहां से उठे तो किसी बाजार में चले गए तो कहा इधर के आ गए, हर वक्त। और यकीन करें, कुछ लोग तो अल्लाह उनसे बचाए, मैं तो ये कहती हूँ, खुद भी हर वक्त बेचैन और घर वालों की भी जान पे पड़ी रहती है। कुछ बीवियां ऐसी होती हैं, मर्दों की जान पे पड़ी हुई है, हर वक्त वो गरीब अल्लाह के बंदे उनके हलू का शिकार होते हैं। ये नहीं वो नहीं, ये कभी फोन करें, ये करें, बच्चे को ये हो गया, वो हो गया, ये कर दे, ये ले दे, आउज़ु बिल्लाह मिन शैतान। बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ जीना। आप अपनी जिंदगी में सोचें कि आपको किन लोगों के साथ रहकर मजा आता है, किन के पास आप बैठे या किसी के घर जाएं तो आप कहते हैं आज बड़ा ही मजा आया। उसके साथ जिसके घर आप जाके बैठे तो उठ के भाग रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, क्या करूं, ये करूं, ये करें। बाज लोग इतनी हॉस्पिटैलिटी भी करते हैं आपके आने पे, वो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आपको एकदम शर्म आती है कि हमने अचानक आकर इनको परेशान कर दिया। फिर बार बार कहेंगे आज घर में ये नहीं है, आज वो नहीं था, आप बता दे, तो फिर आपको और शर्म आती है कि मैंने ये क्या किया, ये तो मैंने अच्छा मामला नहीं किया कि इनके घर आके। और इसके बरक्स एक दूसरा है, वो आपको देखकर एकदम, अरे आप कहाँ से आ गए, खुशी से बैठे, फिर आपके पास आके थोड़ी देर बैठे, मुतमईन बात की, फिर उसके बाद मौके की मुनासिबत से एक दफा उठे, ठंडा गर्म जो ला के रख दिया, और फिर आपको बैठ के कंपनी दी। सच बताएं किस दोस्त के घर जाकर आप खुश होंगे जो पूरा वक्त हलू का शिकार हो, ये भी खिलाना है, वो भी खिलाना है, और साबित ये करना है कि हमारे घर में हर वक्त सब कुछ होता है और हम बहुत खाते पीते लोग हैं। भाई खाने पीने जाते तो होटल में जाते, आप तो अपनी दोस्त से अपने दिल की बात करने गए थे, उसको कोई दुख सुनाने गए थे या उससे कोई मशवरा लेने गए थे, तो हलू वाले इंसान को कोई नहीं पसंद करता। चले आखिरी बात करके फिर आपको मौका दे देती हूँ। बच्चे, आप अपने बच्चों को देखें बचपन से ही, क्या हर बच्चे का मिजाज फर्क नहीं होता? कुछ बच्चे इतने सुकून वाले, कूल काम, कहते हैं तो माँ के पेट में भी सोते ही रहते होंगे, और कुछ अल्लाह की पनाह वो इतने चुलबुले कि मैंने सुना है बड़े लोग उसको कहते हो माँ के पेट में कैसे टिके हुए थे, इधर जा रहे हैं, टेबल पे चढ़े, सोफे पे चढ़े, कुर्सी पे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अगर वो आपके घर मेहमान बन के आया माँ के साथ तो आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते, और वो आपका क्रिस्टल का वो जो बोल उठा के फिर रहा है तो आपका दिल डूब रहा है अंदर ही के जल तू जलाल तू आई बला को डाल। फिर ऊपर से उसकी माँ को दिखाने के लिए आपको ये भी कहना पड़ता है कि बड़ा स्वीट क्यूट बच्चा है, बड़ी खुशी नहीं पर हो गई आपके आने पे, है ना ये कैफियत। ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो सर पे चढ़ के दौड़े। आप बताइए मुझे, आप हलू पे बात करें क्योंकि इस सूरत का ये बहुत बुनियादी तरबियती नुकता है, जिस चीज को अपने अंदर से निकालें, और वो क्या है कि हम अपने आप को खलू से निकालें। यकीन करें ईमान का मुझे तो ऑपोजिट लगता है, चुलबुलापन। कोई बात इस पे शेयर करना चाहें करें, नहीं तो आगे चलेंगे। जी आप इधर से रहा,
दूसरा एंगल भी आ रहा था कंज्यूमरिज्म का, जैसे आजकल हम जो चीज देखते हैं मार्केट में आती है हम उसके पीछे ऐसे भागते हैं जिसके बगैर जिंदगी खत्म हो जाएगी।
जी बहुत अच्छा इन्होंने नुकता दिया, और जब आप दौरे कुरान में ये मौजूद सुनेंगे तो उसमें इस पर बड़ी डिटेल से बात हुई कि आज का तो कल्चर ही हलूक है, आंखें खुली हुई हैं, बिस्किट का डब्बा देख ऐसे लगता है जिंदगी में पहली दफा देखा है। और कभी आप एडवर्टाइजमेंट्स को देखें जरा, जो उनके एक्सप्रेशन है, मुंह खुले हुए, बर्गर एक हाथ से मुंह में, एक में चिप्स मुंह में, एक हाथ में कोक, यानी पूरा लालची कल्चर, दुकानें खुली हुई, ऐसे लग रहा है कि बस और लो। ये सब चीजें भी शो करती हैं कि हम लोगों को ग्रीडी बनाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जिन घरों में ऐसे ही टीवी चलता है जिसमें सिर्फ वो लोग कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट्स ही देखते हैं और खबरें सुनते हैं, उनके घरों में कितना फितना आ जाता है सिर्फ इन मशहूरियों की वजह से। बच्चे उन चीजों को देख के फिर मांगते हैं, अगले दिन वही है, और उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, टूथपेस्ट भी सीधा नहीं आता, वो भी उछलता हुआ ही आता है। आप सिर्फ 5 मिनट के एडवर्टाइजमेंट देखें ना तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया घूम रही है। म्यूजिक देख लें, ये आजकल अल्लाह इनको हिदायत दे, कभी कुरान सुनने के लिए भी यूट्यूब खोलें तो शुरू में 2-3 मिनट का ना वो कुछ ला देते हैं, आप जहर है उनकी कमाने के जरिए। तो अक्सर वो जब आप तो बड़े शौक से सुन रहे होते हैं कि अच्छा तिलावत है, वो एकदम उछलते कूदते आगे लोग आते हैं तो ऐसे हाथ पांव पड़ जाते हैं कि इनको पहले कैसे मैं चुप कराऊं। तो लेकिन आज चारों तरफ यही कुछ है। जी आप,
आपकी ख्वाहिश पूरी भी हो जाती है चीज लेने पर तो वो पड़ी रहती है, और जो अंदर में जो एम्प्टीनेस होता है, खोखला, जिसे ये खोखलापन जो होता है वो नहीं जाता।
जी बिल्कुल सच कहा इन्होंने कि एम्प्टीनेस फिर भी नहीं जाती चीज लेने के बाद, उसकी वजह पता क्या, जो लेने गए थे ले आए उससे अगली चीज पसंद आ गई। जिस दिन आपने लेने की नीयत की थी उस दिन जो चीज थी वो लेटेस्ट थी, जब ले आए तो उसके बाद क्या हुआ उससे अगली बला आ गई। ये आईफोन को ही देख लीजिए, अब वो इतने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में राल टपकती आईफोन 6, भाई तुम्हें कहती 4 है 5 है, आपके 5 है कि 6, भाई तुम्हें क्या लगे 5 है या 6 है कुछ है हुँ? लेकिन नाम है कोई, किसी ने बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट ऐसे इसमें क्लिप भेजा पाकिस्तान की बात है, 6 plus apples, 6 apple 60 रुपए के, और नीचे लिखा हुआ था कि apple 6 60,000 का। तो आप बच्चों को एप्पल पेश करें और साथ iPhone 6 पेश करें तो कौन सा लेंगे, हालांकि उसमें उनके लिए क्या लेके, उनके लिए फन। ये जो आज जितना वीडियो गेम कल्चर है और जितना ये मीडिया से जो हम बच्चों को एंटरटेन कराते हैं इसमें हम बच्चों को हलू बनाते हैं। आप नोट करके देख लें, अगर आपके घर में म्यूजिक चलता रहता है और कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जो फिजी ड्रिंक्स हैं जो बहुत हाइपर कर देते हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो हलू का शिकार होंगे। इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, मैं नाम नहीं लेती ड्रिंक्स के इसलिए कि कुछ का दिल टूटता है, मुझे भी किसी से कोई चिढ़ नहीं है। बहरहाल ये है कि कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं तो उन्होंने चूहों पे तजुर्बा किया था, उनको वो ड्रिंक्स पिलाए थे तो वो चूहे जो थे वो इतनी मस्ती में आ गए कि उन्होंने घर वालों का नाक में दम डाल दिया। तो ये हमारे बच्चे तो कम ही फिर भी गड़बड़ करते हैं, तो इन चीज़ों का असर होता है। इसलिए करना क्या है, इसका इलाज क्या है? कनात मुतमईन रहे, ऐसे सुकून की जिंदगी अपने बच्चों को सिखाएं शुरू से। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में आते हैं ना, उसने ये लिया, उसके पास ये शॉर्पनर है, मेरे दोस्त के पास ये बैग है, ऐसे बच्चे कंपेयर करते हैं ना, शुरू से बच्चों की नजरें झुका दें कि बेटा नहीं, जो है उस पे शुक्र करो, जो तुम्हारे पास है ना वो सबसे अच्छा है और जो उसके पास है वो उसके लिए अच्छा है। तो आप कह सकते हैं कच्चे दिल वाले लोग हलू का शिकार होते हैं, और ऐसे लोग बखील भी होते हैं और हरीस भी होते हैं, जुजा फजा भी बहुत करते हैं। जो अपने पास होता है किसी को नहीं देते, किसी के पास जो चीज़ है फौरन लेना चाहते हैं, और जरा सी चीज छिन जाए तो जुजा फजा। आज आप देखिए जिस हाइपरिज्म का शिकार हैं बच्चे, जरा सी कोई चीज भाई ही ले ले दूसरा तो बच्चे आसमान सर पे उठा लेते हैं, हत्ता के माए कहने पे मजबूर होते हैं कि इन सबको अलग अलग कंप्यूटर ले दो, इनके टीवी भी अलग कर दो, क्योंकि बर्दाश्त ही खत्म हो गई है कि किसी के साथ मिलकर कोई रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी और हमारी नस्लों को भी इन बातों से बचा ले, और ये बहुत बड़ी अखलाकी कमजोरी है। फिर आप देखिए कि इसी की अल्लाह ताला ने आगे कैफियत थोड़ी सी और खोल के बयान कर दी, और वो क्या, इजा मस्सहु शर्रु जजुआ। अब यहां लिख लीजिए कि हलू की सिफात कौन होता है, हलू, कि जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो जजुआ जजो फजा करता है, शोर मचा देता है। व इजा मस्सहु, और जब उसको छूती है अल खैरु खैर, तो मनुआ लोगों से रोकने वाला बन जाता है। कौन होता है खलू, जिसको थोड़ी सी तकलीफ मिले, दौलत में कमी हो, माल में कमी हो, तो वो परेशान हो जाता है, शिकवे शिकायतें है ही कुछ नहीं, मजबूरी है पूरी नहीं पड़ती। और खैर यहां माल के मानों में, खैर मिल जाए दौलत दुनिया की मिल जाए तो मनुआ किससे रोकता है। पिछली सूरत में क्या पढ़ा था, बाग वालों का वाक्या, कि कोई मिस्कीन ना हमारा खाना ले जाए तो कहा कि फिर बुखल करता है। लेकिन अब इसका इलाज क्या है, आप अपने ऊपर लें। इतनी बातें सुनकर दिल करता है कि हम क्या हमारी नस्लें भी इस हलुइज्म से बच जाएं, तो जवाब क्या है इसका, इल्लल मुसल्लीन, नमाजी, मगर वो लोग इस ऐब से बचे हैं जो नमाजी हैं। अच्छा जी, हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं फिर भी हलू है। तो कहा नमाज की वो कैफियत नहीं जिसका जिक्र आगे, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजें हमेशा पाबंदी से पढ़ते हैं, दवाम है, हमेशा के नमाजी। देखिए नमाज सबर सिखाती है ना, सूरह बकरा में हमने 2 दफा ये बात पढ़ी थी, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, सबर और नमाज से मदद लो। नमाज कैसे सबर सिखाती है, आप ये हलू के साथ ही इसको टच करके देख लीजिए ना। इंसान का नफ्स अमूमन क्या चाहता है, बोलो खाओ पियो सो जाओ, लोगों के अंदर अपने आप को एक्सपोज करो। क्या नमाज में हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, किसी के बारे में सोच सकते हैं, तो नमाज ट्रेनिंग हो गई ना। दिन में 5 बार जब हमें ये पॉजेस दिए गए कि इसमें तुमने कुछ नहीं करना, तो खुद ब खुद तबीयत में सुकून आ जाएगा। और आप इसको दूसरे एंगल से देखें, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कंज्यूमिज्म है, एक बंदा दुनिया के पीछे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, इतने में हय अल सला हय अल फला, स्टॉप तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर पक्का नमाजी है तो वो कहेगा जो मर्जी हो दुनिया में, मुझे तो नमाज पढ़नी है, तो ठहराव आता है। आप कह लें कि खुलूक का ऑपोजिट ठहराव है, और ठहराव कब आता है, जब नमाज की पाबंदी है। और जब एक बंदा नमाज पढ़ता है ना, तो फिर वो उसमें अल्लाह के दीन की हर बात को मानता है, फिर नमाज उसको अल्लाह के रसूल और उसकी बातों से भी करीब कर देती है, और ऐसे शख्स को सुस्ती नहीं आती। थोड़ा सा हम दायमून पे बात करते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग जो नमाजी हैं माशाल्लाह, लेकिन कभी नमाज चली जाती है फजर नींद की वजह से, जोहर में भूख सता रही है, असर में पेट बहुत भर गया सुस्ती आ गई, मगरिब के वक्त में कोई दुनिया की चीज लेने निकले थे रात होने का खतरा, फटाफट जाके लाना चाहते हैं। इन सब के ऑपोजिट जब एक बंदा 5 वक्त नमाजी हो जाता है ना, नंबर एक, उसकी तबीयत से सुस्ती चली जाती है, फिर आराम तलबी निकल जाती है, फिर मसरूफियतें चली जाती हैं, फिर कोई दिलचस्पी, उनकी पसंद का प्रोग्राम लगा है, इनमें से कोई चीज़ नमाज के पढ़ने में रुकावट नहीं बनती। जब नमाज का वक्त आता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते हैं। ये हैं अला सलातिहिम दाइमून। उकबा बिन आमिर ने इसका एक बड़ा खूबसूरत मफहूम पेश किया, कहते हैं कि वो पूरे सुकून और खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं, कव्वे की तरह ढूंगे नहीं मारते, मारा मार पढ़कर किसी न किसी तरह नमाज से फारिग हो जाने की कोशिश नहीं करते, और नमाज के दौरान इधर उधर तवज्जो भी नहीं करते। हम सब अपने ऊपर ले, हमारी नमाज कैसी? लो तुम खड़ी हो, मैं 5 मिनट में पढ़ के आई। सब काम सुकून से और नमाज जल्दी जल्दी। रोटियां आपका नहीं, लो मैं नमाज पढ़ के, बस 5 मिनट में, नहीं 6 नहीं लगेंगे, फिक्र नहीं करो। और किसी से बात करने में, उसको सी ऑफ करने में 10 मिनट लगा देते हैं। हम सब अपनी नमाजों को देखें, अगर मेरी नमाज ठीक नहीं, मेरा नमाज में दिल नहीं लग रहा, तो यकीनन मेरा अल्लाह से ताल्लुक कमजोर है। अरबी मुहावरे में ठहरे पानी को मा इन दाइम कहा जाता है, ठहरा पानी गहरा होता है ना। और याद रखिए कि ऐसे नमाजी जो होते हैं ना, ये ठहराव वाले, इनके अंदर गहरापन बहुत होता है। लोग तो इनको सीधा साधा समझ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बड़ी डेप्थ होती है, हर चीज अपने वक्त पे करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो बात आ रही है आगे, कि ऐसे लोग जो हैं वो साइल का हक भी देते हैं और महरूम का भी। सूरह ज़ारियात आयत 19 में हम पढ़ चुके कि इनके मालों में साइल और महरूम का हक है, यहाँ के इनके मालों में साइल और महरूम का एक हक मुकर्रर है। बास कहते हैं इस हक से मुराद फर्ज ज़कात है, क्योंकि उसमें नसाब भी होता है, शरह भी होती है। बास कहते नहीं, क्योंकि सूरत मारिज मक्की सूरत है और मक्का में ज़कात का नसाब नहीं था, ये मदीना में हुआ। तो यहाँ फिर हक के मालूम से क्या मुराद है, इन्होंने खुद अपने मालों में मुकर्रर कर दिया कि इतना हिस्सा हमने दूसरों को जरूर देना है। सवाल समझ आ रहा है? इन पे फर्ज नहीं थी हुई अभी, लेकिन इन्होंने खुद पे फर्ज कर लिया, ठीक है। और साइल का लफ्ज यहाँ देखिए दोबारा आ रहा है, कि सूरत के शुरू में भी आया, यहाँ भी आया। तो साइल से मुराद पेशावर भीख मांगने वाले नहीं, बल्कि हाजतमंद लोग जो किसी से मदद मांगे सही काम पे। और महरूम या महरूम से मुराद ऐसा शख्स जो बेरोजगार हो, जॉबलेस, रोजी कमाने की कोशिश करता है मगर इसकी जरूरतें पूरी ना होती हों। और या फिर महरूम कहते हैं उस शख्स को किसी हादसे या आफत का शिकार होकर मोहताज हो गया, और या फिर रोजी कमाने के काबिल ही ना रहा। तो ऐसे लोगों को जब जरा सा शक पड़ता है ना कि ये जरूरतमंद लोग हैं, तो वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि इनकी महरूमी दूर हो और फिर इसके बाद ये मांगे और करे, बल्कि वो फौरन चल पड़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही कर दे, हमारे दिलों में ऐसा ही अल्लाह ताला का और उसके बंदों का ख्याल आ जाए। और इसके बाद फिर उनकी कुछ मजीद बातें, वल्लज़ीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन, जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं। कौन सा दिन है वो? बदले का दिन, क़यामत का दिन। वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफिकून, और जो अपने रब के अजाब से डरते ही रहते हैं, शुतर बेमुहार नहीं है। इतने अच्छे अच्छे काम करके, इतात और अमल सालेह के, फिर भी अल्लाह की अजमत और उसके जलाल की वजह से कांपते रहते हैं, क्योंकि इन अजाब रब्बिहिम गैरु मामून, बेशक इनके रब का अजाब बेखौफ होने वाली चीज ही नहीं है। इसको हाईलाइट करें, बड़ी बड़ी नेकियां करके भी बेखौफ नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की जात और उसकी पकड़ से बेखौफ बंदा हो ही नहीं सकता। दुनिया में आप देखिए, सीट बेल्ट बांधी भी हो, स्पीड लिमिट ठीक भी हो, फिर भी पुलिस की गाड़ी को अपने पीछे आता देखकर दिल कांप जाता है कि कोई गड़बड़ करके आया हूं। फौरन चेक करते हैं, ओवर स्पीड तो नहीं हो गया। मोमिन अल्लाह की पकड़ से कभी खुद को आगे नहीं करता। और पता क्या चला, कि अल्लाह के अजाब से एक बंदे को बेखौफ रहना भी नहीं है। अल्लाह हमें ऐसा ही खौफ लगा दे। फिर इसके बाद इनकी मजीद खूबियां, इनको पढ़ते वक्त आपको सूरत सूरत मोमिनून याद आएगी, वो मदनी सूरत ही, ये मक्की है, यानी वही सूरत का मफहूम इसमें है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जिना से, बदकारी से, लवातत से, बदनजरी से। हाँ मगर इल्ला अला अज़्वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। यहां से पता चलता है कि हराम छोड़ेंगे तो हलाल में लज्जत मिलेगी। लौंडियों पे सूरत निसा में डिटेल से बात हुई, आज इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सिलसिला मौजूद नहीं है। बीवियों की बात आ गई कि शौहर और बीवी के ताल्लुक में कोई आर नहीं है। हत्ता के सहाबा कराम ने जब ये बात आपके मुंह से सुनी कि शौहर का अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी करना, इसका भी अजर है, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس میں ثواب کی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اگر اس کو غلط جگہ پہ پوری کرتے تو گناہ نہ ہوتا. یعنی ہمارا دین وہی ہے کہ جو مثال پیچھے بھی آپ کو دی تھی کہ ام موسیٰ کی طرح اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور مزدوری بھی پائے. ہم سراسر اپنی دنیاوی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ یہ اجر بھی پا رہے ہوتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں تو اجر ملتا. نیت کیا ہے؟ کہ اس کھانے سے جو طاقت اور انرجی ملے اس سے عبادت کرنی ہے. آپ رات کو جلدی سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہیں؟ تاکہ فجر کا زانہ ہو، سونا بھی عبادت ہے. آپ اپنے شوہر کو خوش رکھتے ہیں تاکہ ان کو اطمینان ہو، وہ شرح صدر کے ساتھ کام کریں، ان کی ساری ضروریات پوری ہوں تاکہ وہ ہر کام اپنا آسن ترجمے کرے. آپ کا ہر معاملہ عبادت ہے. تو نیت جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. پھر فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو کوئی اس کے علاوہ راہ فرار ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے. اس میں وہی سب کچھ آتا ہے جو پیچھے بھی بات ہوئی تھی. باہر کی چیزیں تو سمجھ آ گئیں، زنا یعنی بیوی اپنی موجود ہے کسی اور عورت سے زنا کرنا. پھر دوسری چیز اس میں آتی ہے بغیر شادی کے ریلیشن شپ رکھنا، لیونگ ٹوگیدر. پھر اسی طرح لواطت، سحاق. پھر اس میں ایک چیز بیوی کے ساتھ بھی ممنوع تعلق، دو چیزیں اس میں. اللہ نے جن دنوں میں پابندی لگائی ہے ان میں بھی خواہش پوری کر لینا، یہ زیادتی ہے، اس سے رکنا چاہیے، کفارے والی زیادتی ہے. پھر دوسری اس میں کیا ہے کہ جس جگہ سے اللہ نے روک دیا اس جگہ پہ نہیں جانا، سورت بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے. تو بیوی کے ساتھ تعلق میں بھی حدیں ہیں. دیکھیں مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہو کرو. ہمارے ہاں کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، غلط جملہ ہے، سب جائز نہیں ہے. اللہ نے کچھ حد رکھی ہے، اگر اس کے ادھر ادھر جائیں گے تو نقصان ہوگا. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و اقرار کا پاس رکھتے ہیں. امانتیں کیا ہیں؟ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اس کو پوری کرتے ہیں. جو مانتے لوگ رکھتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے، عہد کرتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں ہیں، یعنی اس میں سکون سے رہتے ہیں. راؤن کس کی جمع؟ رائی کی. رائی کس کو کہتے ہیں؟ شیفرڈ کو کہتے ہیں، چرواہے کو کہتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں. جو آپ میں سے کسی نے بھی بتایا کہ صرف ایک سچی گواہی دینے کی وجہ سے کئی گھنٹے عدالت کے باہر کھڑا ہونا پڑا نا، یہ تھانے جانا پڑا تو مشکل لگتا ہے لیکن کرنا پڑے گا. سچی گواہی کو چھپانا آپ کو تو کبیرہ گناہوں میں سے، جھوٹی قسم کھا کے گواہی دے دینا یہ درست نہیں. اور یہاں اس سے مراد ہے کہ صحیح گواہی دے دی ہے چاہے اس کی زد میں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے، اس کو بھی نہ چھپانا ہے نہ بدلنا ہے، اس لیے کہ اس سے حق تلفی ہوگی دوسروں کی. یہ سب کام کرنے والے اولائکہم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دوسری بار ذکر آ گیا، سورہ مومنون میں بھی نماز کا دو دفعہ ذکر ہے نا، پہلے خشوع پھر حفاظت. سو نماز کی حفاظت کیا، ذرا دہرا لیں، آپ ہی مجھے بتا دیں، پڑھ تو آپ چکے ہیں. کیا چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں؟ جی آپ بتائیے. اچھا وضو کرنا، جی رم، وقت پہ ادا کرنا، جی خشوع کے ساتھ کرنا،
برائیوں سے رکنا،
نماز کے بعد برائیوں سے رکنا، توجہ سے پڑھنا، اللہ کے نبی کے طریقے پہ پڑھنا، اور نماز کو ٹالنا نہیں. جی آپ پاکیزگی کا پیشاب کی چیٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، پاکیزگی کا خیال رکھنا، اور قبلہ روح ہونا. یعنی حفاظت میں وقت، کیفیت، کمیت سب کچھ آتا ہے. جی آپ ادھر سے. اچھی نیت رکھنا، ریاکاری اور شو آف کے لیے نہیں ہونا، سستی کی نماز نہ ہو، ماری باندھی نماز نہ ہو. جی لباس کا خیال رکھنا، کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں وہ ساتر ہوں، سی تھرو نہ ہوں، ٹائٹ نہ ہوں، اس میں جھلکے نہیں، نماز پڑھتے ہوئے انکمفرٹیبل فیل نہ کریں، دوپٹہ پھسلنے والا نہ ہو. یعنی یہ ساری کیفیات کہ نماز بڑے سکون سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ. فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، کیا ملے گا ان کو؟ یہی لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے. دنیا میں بعض دفعہ اپنی عزت خراب ہوتی بھی لگتی ہے نا، اللہ کی بات مانتے ہوئے. اب محفل سے اٹھ کے میں نماز پڑھوں، اب میں یہ حلیات اختیار کروں، پھر اس کے لیے تو مجھے دوپٹہ بھی چاہیے ہوگا، اسکارف بھی چاہیے ہوگا، گھر جا کے پڑھ لوں گی. تو یہ نہیں ہے وہ نمازی. اور یہ جتنی صفات ہیں ان سب کو سنتے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے جن کی یہ بات ہے. اب اس کے بعد آخری باتیں، موضوع بدلتا ہے.